प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यही कहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार, तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है।
ओम शांति। ये सभा किसकी है? ये सभा तो लगता है बकरियों की सभा है, आवाज में ताकत ही नहीं है। शेरनियां हो बकरियां? कोई नहीं हो शेरनियां, सब बकरियां। तो अच्छी तरह ओम शांति बोलो। यस, क्योंकि कुमारी जीवन एक्स्ट्रा एनर्जेटिक जीवन है। कुमारी जीवन जिस जीवन को दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मिलता है, कुमारों को भी इतना प्यार नहीं मिलता जितना कुमारियों को मिलता है। कुमारियों को सब प्यार करते हैं, दुनिया जिसको रिजेक्ट करती है। लड़की पैदा होती है तो कहते हैं कौन आ गई, भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं, वो हम रिपीट नहीं करना चाहते। भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं, बाबा मुरली मिश्रा तक खटिया उल्टी कर देते हैं। आज जमाना बदला हुआ है और आज कुमारी जीवन वह जीवन है जिसके लिए लोग तरसते हैं, तरसते हैं। ब्राह्मण परिवार में आप अगर माताओं से पूछो तो माताएं कहेंगी काश हम भी कुमारी होते, हमने गलती कर ली, हमको ये ज्ञान एक महीना पहले मिल जाता तो हम बच जाते, हमें ये ज्ञान 15 दिन पहले मिल जाता तो हम बच जाते। और हम कहते हैं आपके भाग्य में वही है, हमारे भाग्य में ये है। लेकिन क्या मैं अपनी नजरों में अपने आप को इतना महत्वपूर्ण और इतना इम्पोर्टेंट समझती हूं? मैंने जीवन का ये निर्धारण सच पूछो तो लगभग 8.5 वर्ष की आयु में किया था। माता पिता ज्ञान में आ गए थे और बाबा कहते हैं कि घर में चित्र लगाओ, कोई आए तुम उसको समझाओ, गृहस्थियों को बाबा कहते हैं ना। तो उन दिनों में कानपुर में फादर ऑफिसर थे, बहुत बड़ा बंगला था और चित्र लगाए हुए थे, त्रिमूर्ति झाड़ गोला। और पिताजी एक एंग्लो इंडियन महिला को समझा रहे थे और मैं भी ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी और जो पिताजी समझा रहे थे सारी बातें तो मुझे याद नहीं, लेकिन दो बातें जो उस समय दिमाग में फिट हो गईं उस आयु में 8.5 साल की आयु में, जो वो दो बातें फिट हो गईं उन्होंने आज इस मुकाम पर लाया। क्या थी वो दो बातें? पहली बात उन्होंने समझाते समझाते बोला कि जब कन्या होती है तो उसके सब चरण स्पर्श करते हैं, सब उसके पांव छूते हैं। जब वो शादी कर लेती है तो उसको सबके पांव छूने पड़ते हैं। देखा है ना, वो बिचारी वेदी से उठती है और कहते हैं ये तुम्हारा ससुर है, इसके पांव लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, बिचारी सबके पांव छूती रहती। उस समय हमें तो पता नहीं था, बच्चे को क्या पता शादी क्या होती है, लेकिन उस छोटी सी आयु में ये बात दिमाग में फिट बाबा ने कर दी कि मैंने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाना। एक बार। दूसरी बार उसी समय वो समझाते समझाते उन्होंने बोला पिताजी ने कि जब इस दुनिया में आए हो तो भेड़ चाल नहीं चलनी है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। भेड़ चाल चलना अर्थात सामान्य रूप से आए, जिंदगी बिताई, घर गृहस्थ बनाया और फिर एक दिन चल दिए, ये सामान्य भेड़ चाल है। और स्पेशल चीज है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है, कुछ स्पेशल करके दिखाना। तो ये बात भी उसी समय बुद्धि में बैठ गए। पढ़ाई ध्यान पूर्वक पढ़ते थे, कोई मैं किताबी कीड़ा नहीं थी, लेकिन क्लास में जो सुनाया जाता था उसको एकाग्र होकर के सुनते थे। कभी इधर उधर नहीं देखती थी, स्कूल कॉलेज में कन्याएं स्लिप्स पास करती हैं, क्या क्या डायग्राम बना के पास करती हैं, मैं नहीं। पिक्चर जाएंगी, इधर बैठेंगी, पार्टी पे जाएंगी, क्लास बंक करेंगी, कैंटीन में जाएंगी, मैंने नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा लाइब्रेरी में जाती, और लाइब्रेरी में जाके नई नई बातें निकालती। तो मुझे सब लोग, और बाजार का नहीं खाना ये सब तो बचपन से ही हमारे जीवन में आ गया, क्योंकि माता पिता चलते थे ज्ञान में, तो बाजार का खाना पीना, इधर उधर का खाना पीना तो पहले ही छूट गया, कभी संकल्प भी नहीं आया बाल्यकाल से, बिल्कुल शुद्धता रही। तो मुझे कॉलेज में बोलते थे, यूनिवर्सिटी में बोलते थे कि सिंपल रहते थे, वाइट ड्रेस नहीं पहनते थे, पहनती कलर्ड थी, लेकिन बोलते थे सिंपल है बिल्कुल, और मुझे कहते थे ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर जो कहीं भी नहीं जाती वहीं बैठी रहती है। तो मैं तो नहीं जाती थी, अब तुम चाहे मुझे ग्रैंड मदर बोलो चाहे जो मदर बोलो, मैं तो नहीं तुम्हारे कहने से अपने नियम असूलों को तोड़ दूंगी, कैंटीन जाऊंगी, फिल्म जाऊंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी, कभी नहीं गए। इन चीजों का, और फिर बाबा ने एक बार मुरली चलाई कि एक अच्छा स्टूडेंट 5 बार मुरली पढ़ता है। उन दिनों अपनी स्टूडेंट लाइफ में मैं 5 बार मुरली डेली पढ़ती थी, जिसका नतीजा ये हुआ सब प्रकार की व्यर्थ बातों से बाबा ने मुक्त करके रखा, और सेवा में सदा जी हाजिर। कुछ भी हो जाए, अगर सेंटर की बहनों ने कहा है आपको आना है, ये सेवा है, तो आज दिन तक मेरा रिकॉर्ड है मैंने कभी भी किसी भी सेवा के लिए ना नहीं की है, सदा जी हाजिर जी हजूर। अभी भी कल दिल्ली में कितना विशाल प्रोग्राम था, दादी जी आए हुए थे, 3-4 दिन से बहुत रिमझिम मची हुई थी, कितनी व्यस्तता होगी आप कल्पना कर सकते हैं। 50,000 भाई बहन लाल किला में एकत्र हुए, उस कार्यक्रम की तैयारी, उसका सारा संचालन आदि कम काम नहीं था। और आज भी ओआरसी में भट्टी के ग्रुप बैठे हुए हैं, भट्टी चल रही है, लेकिन कहा गया आपको आना है भट्टी में, कन्याओं का भी क्लास कराना है, माताओं का भी कराना है, ना नहीं बोला। मुझे सब ने कहा ना बोल दो, इतना थके हो कैसे जाओगे, ना कर दो, क्या हो गया, कन्याएं तो हैं। मैं कन्याएं हैं वो मुझे पता है कन्या क्या चीज है। अब मैं सवेरे आई हूं, रात की ट्रेन से वापस जा रही हूं। जब तक हम अपने आप को एक्टिव अलर्ट रख सकते हैं तो हम रखें ना, क्यों ना रखें, ना क्यों करें, व्हाट इज द रीजन। आज का आपका जो विषय है, और कई बातें दिल तो करता है मैं बहुत सारी बातें आपके साथ करूं, लेकिन आज बातों का टॉपिक फिक्स कर दिया गया है, सत्यता और सभ्यता। ये दोनों ही मुझे अति प्रिय हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, सत्यता में जो शक्ति है वह इनकम्पेरेबल है, अतुलनीय है। सबसे पहली सत्यता क्या है, मैं आत्मा हूं और ये देह है, और मैं आत्मा इस देह की मालिक हूं। पहले भी थी, अभी भी हूं और फिर भी रहूंगी। ये देह नश्वर है, जो पहले नहीं था और फिर भी नहीं रहेगा। तो मुझे साथ किसका देना है, मुझे साथ किसका देना है, जो अविनाशी। ये बुद्धि बाबा ने दी, जो ज्ञान बाबा ने हमें दिया है, उस ज्ञान का एक असूल है कि जो नैया डूबने वाली है उस नैया पर बैठना नहीं है, ये विवेक है, समझदारी है। दो नौकाएं हो और एक सीधी डूबने वाली हो और दूसरी जो पार ले जाने वाली हो, डूबने वाली नाव बड़ी सुंदर हो, सोने की हो, और पार ले जाने वाली नाव लकड़ी की हो, बांस की हो, किसका साथ देंगे, किसमें बैठेंगे? हाँ? लकड़ी वाली में, बांस वाली नाव में बैठेंगे ना, या सोने की नाव में बैठेंगे? सोना फिर थोड़ी मिलेगा, अभी मिला है ले लो। नहीं नहीं, क्यों वो साथ नहीं रहेगा, सीधा ले मुझे भी डूबेगा। इसलिए हमेशा एक तो ये चीज सत्यता में चेक करो, जब भी लाइफ में कोई धारणा अपनानी है तो कन्याएं जो कंफ्यूज होती हैं ये करें या ये करें, उसमें सदा सत्यता को सामने लाओ। कौन सी चीज अविनाशी है, कौन सी चीज स्थाई है। जो चीज अविनाशी है, जो चीज स्थाई है, उसका मैंने अवधारणा जीवन में कर ली है। जो चीज स्थाई नहीं है, कितनी ब्यूटीफुल क्यों ना हो, उसका मैंने साथ नहीं लेना है। नहीं तो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, फिर ये होगा। इसलिए उसका साथ नहीं लेना है। ये क्लियर क्लियर। कन्याएं कहती हैं हम नौकरी करते हैं, हम पढ़ते हैं, हम पढ़े या ना पढ़े, पढ़ना बुरी बात नहीं है, पढ़ो, पढ़ना चाहिए, लेकिन अपनी ईश्वरीय पढ़ाई की कॉस्ट पर नहीं होना चाहिए। ईश्वरीय पढ़ाई के कारण मैं सत्युग में जाने वाली हूं, वो पढ़ाई मुझे केवल इस जन्म के ही कुछ वर्ष सहयोग देने वाली है। अब सोच लो क्या करना है, इंपॉर्टेंस किसको देनी है। मेरा अनुभव और मानना ये है, जितना हम ईश्वरीय पढ़ाई को महत्व देते हैं, बाबा हमें मदद करता है जो हम अपनी दूसरी पढ़ाई लौकिक पढ़ाई को भी अच्छी तरह पढ़ते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। यहाँ पे और भी कुछ कन्याएं मैं देख रही हूं बैठी हैं, जिनका भी अनुभव है। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने से जो मेरी लौकिक पढ़ाई है वो भी बेटर हो जाती है। इंटेलिजेंस में हम कोई एक्स्ट्रा नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि मन में बुद्धि में वेस्ट नहीं होता, व्यर्थ नहीं होता, समर्थ ही होता है, तो वो समर्थ आपको गाइड करता है क्रिएटिविटी के लिए। जिसकी बुद्धि में व्यर्थ बहुत है उसकी बुद्धि में क्रिएटिविटी नहीं आएगी, और जिसकी बुद्धि में बहुत व्यर्थ है क्रिएटिव नहीं हो सकता। मैं आपसे एक बात शेयर करती हूं, मैं कोई अपनी महिमा वो नहीं करना करने के हिसाब से, लेकिन आप लोगों को उस बात का महत्व बताने के हिसाब से। जब दीदी मुझे सेंचर की दीदी ने कहा तुमको शाम को आना है, और सवेरे मेरा एग्जाम था, सेंटर पर गवर्नर आ रहा था, दीदी ने कहा तुमको अपना अनुभव सुनाना है गवर्नर के आगे। मैंने कहा दीदी मेरा सवेरे एग्जाम है, तो भी उन्होंने कहा नहीं तुमको आना है। मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मैं आज्ञा को रोक तो नहीं सकती, तोड़ तो नहीं सकती, उन्होंने कहा तुमको आना है। मैं गई, सेवा की, सवेरे एग्जाम दिया, और आप हैरान होंगे उस पेपर में सारी क्लास में मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे। और वो पेपर इतना अच्छा हुआ, सारे मिड सेशंस थे, सारी क्लास में हम लोग 28 थे, ये मैं एमए की बात कर रहे हैं, ओनली 28, और हमारे पेपर दो यूनिवर्सिटी से चेक होते थे, एक यूनिवर्सिटी से नहीं, डबल यूनिवर्सिटी से चेक होते थे। तो क्लास में मेरा वो पेपर घूम गया कि इसने ऐसा क्या लिखा है जो इसको इतने मार्क्स मिल गए, और वो पेपर मुझे चार टुकड़ों में लास्ट में मिला, क्योंकि सब कोई नोट कर लेता था। अब मैंने सोचा, अब ये मेरी अक्ल नहीं है, लेकिन बाबा ने दिया बच्चे, अब ये आंसर तुम्हारा कॉमन हो गया, सब लोग इसको लिखेंगे, अगर ये क्वेश्चन आ गया फाइनल्स में, सबको इसमें लिखेंगे तो तुम्हें तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बाबा ने टच किया। एग्जाम से एक दिन पहले लाइब्रेरी गई और वहां से नई नई बातें, नई नई चीजें लेकर के आ गई, जो रिसर्च थी आदि आदि नई नई लेके आ गई। और जब एग्जाम में लिखा तो डेट वाइज न्यूज़पेपर का नाम लिखते, जर्नल का नाम लिखते जब लिख करके किया तो फिर फर्स्ट आए, फिर आए। तो मेरा मानना ये है कि जब हम सत्यता का साथ देते हैं, ये तीसरी बात बता रहे, सत्यता का साथ देते हैं तो सत्य मेरा बाबा है। बाबा मेरा साथ नहीं देगा क्या? बाबा साथ देगा। हम दिल से पुकारेंगे, बाबा आ जाओ, बाबा आ जाएगा। मेरे ढेर अनुभव हैं, ढेरों अनुभव हैं, लेकिन बहनों में एक बात और शेयर करती हूं, मैं आपसे भी कहूंगी, कभी भी मन में मैं ऐसे ब्रह्मा कुमारी बनकर के क्लास कराऊं, ये करूं, ये मेरा एम नहीं था। मेरा एम था मैं पढ़ूंगी, अच्छे से अच्छा पढ़ूंगी, नौकरी करूंगी, हाथ में पैसा कमाऊंगी, और उन दिनों पैसे की जरूरत होती थी क्योंकि सेंटर थोड़े थे, धन की कमी थी, और दादियों का जीवन देख करके डर लगता था, इतना त्याग ये तो मैं नहीं कर सकती, बहुत त्याग है इनके जीवन में, मैं नहीं कर सकती, तो भाई मैं तो कमाऊंगी। लेकिन ट्रेनिंग की तो बड़े दादी, दादी प्रकाशमणि, सब कन्याएं सरेंडर हो गई, और मुझे क्लास का मॉनिटर बनाया था, मॉनिटर ही बोलता है मैं सरेंडर नहीं होंगी। तो चंद्रमणि दादी को चिंता लग गई, सारी मेहनत कहाँ जा रही है हमारी, यही बोल रही है मैंने नहीं सरेंडर होना, क्या करोगे? मैंने कहा ऐसा करूंगी, मैं कमाऊंगी और सेंटर को मदद करूंगी और अपना ये जीवन चलाऊंगी। दादी ने कहा, प्रकाशमणि दादी के पास बात पहुंची, प्रकाशमणि दादी ने कहा तुम कितना कमा लेगी एक महीने में? 1 लाख 2 लाख? अगर तुम मम्मा को देखो, मम्मा अपने साथ कुछ लेके आई? कुछ नहीं लेके आई, लेकिन मम्मा की पूजा किस रूप से हो रही है? धन की देवी के रूप से पूजा हो रही है, लक्ष्मी के रूप से पूजा हो रही है। सब मम्मा से धन मांगते हैं, क्यों? क्योंकि मम्मा ने अपने जैसा अनेकों को बनाया, उन सब का जो समर्पण हुआ, उन सब का जो शेयर है वो मम्मा को गया, इसलिए वो धन की देवी बन गई। समझ आई ये बात? अनेकों को आप समान बनाना और उनको प्रेरित करना जिससे वो अपना धन बाबा की सेवा में लगाए, तो जब वो अपना धन सेवा में लगाएंगे तो आपको भी उसका शेयर मिल जाएगा, धन की देवी बन गई। ये बात समझ में आ गई और अपने आप को ऑफर किया। फिर मैं कहती थी सरेंडर नहीं होना, ट्रायल पर रहूंगी, डर लगता था, ट्रायल पर रहूंगी, सरेंडर नहीं होंगी, क्योंकि कभी कभी कोई कोई बात सुन लेते थे तो डर लगता था, कोई कोई बात देख लेते डर लगता था, देखा तो कुछ नहीं, सुन लेते थे। कन्याओं में होता है ना, यहाँ क्यों, तेरे को पता है वहां ये हो गया, तेरे को पता है वहां ये हो गया, तो उससे ना डर होता था, तो वो थोड़ा अंदर होता था। तो मैं कहती दादी मैं ट्राई करूंगी, ट्राई करूंगी। फिर कभी कभी जब बड़ी दीदी, मेरे को तो गुस्सा नहीं किया, मैं बाबा का शुक्रिया करती हूँ, मुझे गुस्सा किसी बड़े ने नहीं किया, लेकिन जब मैं एक दूसरे को देखती थी ना और वो गलतियां ऐसे करती थी जिससे उनको डांट पड़ती थी, तो मैं डर जाती थी। तो मैं सोचती थी मैंने सरेंडर नहीं होना, मैं झाड़ू पोछा लगाने आई हूँ क्या, इतनी बड़ी मैं लेक्चरर, लड़कियां फूल लेकर के मेरे लिए रेडी रहती थी, गेट के पास खड़ी रहती थी वेलकम करने के लिए, और अब मैं इनकी बातें सुनूं? मैं तो नहीं सुनती, मैं नहीं सुनूंगी, ये मेरे वश की बात नहीं है। ये सब बातें मैंने पार करी, मन ही मन में झाड़ू भी लगाती थी, पोछे भी लगाती थी, मन ही मन बातें करती थी। तो बाबा मेरे को आंसर भी देता था, समझाता भी था अंदर ही अंदर। तो क्या हुआ, मैंने कहा अच्छा अगर मैं बाहर चली भी गई, बाहर की दुनिया में रही, माना नौकरी हो गई, वहां पर अगर मुझे कोई ऐसे व्यक्ति मिल गए, अगर मैंने शादी कर ली और फिर मुझे ऐसा कोई व्यक्ति मिल गए, दरानी जठानी कोई ऐसी हो, उनके स्वभाव संस्कार से टक्कर खाने से तो अच्छा है अलौकिक परिवार में टक्कर खा लो, उसमें नंबर तो मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ अपने हिसाब किताब तो चुकते होंगे। तो मैं ऐसा सोचती थी, बातें करती थी। फिर धीरे 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 जितना जितना ज्ञान की पराकाष्ठा बढ़ती गई ना, उतना उतना समझ आती, फिर ये सब बातें नहीं उठी। और मैं आज आपको एक बात बताने वाली हूँ, जो अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो ये हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, और एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आज दिन तक आप समझो 8.5 वर्ष की आयु से हम चल रहे हैं, तो सारे ही यज्ञ देखा है हमने, पूरी डेवलपमेंट देखी है, पूरी आंखों देखी है। जब हम लोग ज्ञान में आए थे सारे भारत में 5-6 सेंटर थे, 5-6, तो जरूर सब कुछ देखा ना हमने। तो क्या हुआ, अच्छे अच्छे बाबा कहते हैं ना, जो तुमको पढ़ाते हैं वो भी भागंती हो जाते हैं, पढ़ाने वाले भी चले जाते हैं ना, किसी की टीचर भाग जाती है, किसी का जिसने बचपन में ज्ञान सुना वो भाग जाता है, हमारे भी टीचर जिसने हमको ज्ञान सुना वो भी भाग गए। अच्छे अच्छे मम्मा बाबा का खाना बनाने वाले भागंती हो गए, चले गए, बहुत लोग भागंती हुए। बाबा कहता है स्वर्ग का वर्षा कोई प्लेट पे रख के मिलने वाला तो नहीं है, उसके लिए तपस्या चाहिए, तो तपस्या में तो लगेगा ना। लेकिन मैं आपको वो राज की बात बताने जा रही हूँ, आज दिन तक मैंने किसी को नहीं देखा है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे क्या करना है, क्या मैंने उसकी प्रजा में आना है जो मैं उसको देखूं? मुझे तो अपना लक्ष्मी नारायण का पद प्राप्त करना है, मुझे उस रास्ते पर सीधे सीधे जाना है, मैं क्यों किसी को देखूं? उनको देखकर मैं प्रभाव में उनके आ जाऊं तो मेरा शिव बाबा से संबंध गया? कई लोग मनुष्य आत्माओं से प्रभावित हो जाते हैं, कोई किसका नाम लेता है, कोई किसका नाम लेता है, कोई किसका नाम लेता है, मुझसे पूछो मैं तो एक आत्मा से भी प्रभावित नहीं, कभी नहीं हुई। मेरे उसमें जब लिखते हैं कभी कभी पूछते हैं फॉर्म में, आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका रहा, तो मैं तो क्रॉस कर देती हूँ, किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं रहा, रहा तो केवल बाबा का रहा। ये सत्यता है, सब मनुष्य आत्माएं उतार चढ़ाव में आती हैं। आज आप उनको देखोगे आपको लगेगी देवी है, कल को देखोगे तो लगेगे एकदम दूसरा रूप है। तो कहा अरे इसको तो मैं बड़ा अच्छा समझती थी, ये भी ऐसी है इतने साल से चलने वाली, वो भी उसका भी हाल ही है, तो हमारा क्या होगा। वाह हम कोई कम है क्या, हमारा क्या होगा, हम उससे कम है क्या। बाबा ने मुझे अलग आत्मा दी है, बाबा ने मुझे अलग से सारे संस्कार दिए, बाबा ने मुझे एक ही लक्ष्य सामने बढ़ने का दिया है, उसका ये हाल हो तो मेरा क्या होगा, मैं कम हूं क्या, क्यों अपन को कम समझू, मेरा क्या होगा, मेरा हाल बहुत बढ़िया होगा। पक्का पक्का अपने आप में विश्वास रखो, ये सत्यता है। अगर आप स्वयं में विश्वास नहीं रखेंगे कौन आप पर विश्वास रखेगा। सब कहेंगे हिम्मत ही नहीं रखती, इसको क्या हिम्मत दी जाए। जो हिम्मत रखता है उसको सब कोई हिम्मत देते हैं, और जो अपनी नैया खो करके बैठता है उसे कोई क्यों हिम्मत देगा, कोई हिम्मत नहीं देता। और उसको और ही बाबा कहते हैं ना, कभी कोई ऐसा ऐसी बात होती है जो आपके मन में ऐसी आ जाती है, और उसके बाद दूसरे लोग भी हाँ हाँ अरे बहन देख लिया ब्रह्मा कुमारियों को, मेरे तो घर के साथ रहती हैं, मैं सारा दिन देखती हूँ क्या होता है। बोलते हैं मैं देखती हूँ। तो किसने बोला आपको वहां देखने को, ये सत्य ज्ञान है झूठ ज्ञान है, ये आपका मनमत का ज्ञान है ना, आप उसको देख रहे हो। भगवान ने तो कहा मुझे देखो, फॉलो फादर एंड मदर, भगवान ने कहा ही नहीं किसी मुरली में फॉलो ब्रदर एंड सिस्टर। आपने गलत काम क्यों किया, गलत किया तो भुगतो। भगवान तो सत्य ज्ञान दे रहे, सच्ची बात देखो ना, अगर गलत देखोगे तो गलत मिलेगा, गलत होगा। भगवान की बात सत्य है, इंसान की बात तो नहीं है ना, इंसान तो पुरुषार्थी है, आज अच्छा होगा कल को उल्टा भी हो सकता है। हमने उनको नहीं देखना है, ओनली फॉलो फादर एंड मदर, उससे आपके जीवन में शक्ति है, ये सत्यता है। ये सत्यता है कि मैं विजयी हूं, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, भगवान ने मुझे विजय का तिलक लगा करके पैदा किया है, ये सत्य है। उस विजय के तिलक को देखो, 5000 पहले भी मैंने किया था, अब भी कर रही हूं और फिर भी करूंगी। अरे 5000 साल पहले भी मैं बनी थी लक्ष्मी नारायण, अभी मेरे को क्या करना है, रिपीट तो करना है ना, That's all। और अब आ जाओ सत्यता धारणाओं पर। सत्यता धारणाओं में किस रूप से दिखाई देती है, ट्रांसपेरेंसी, ट्रूथफुलनेस। सबसे पहले ट्रूथफुलनेस जिसको हम कहते हैं सच बोलना। सच तो बीठो नच, सच्चे दिल पर साहब राजी है, सांच को आंच नहीं। सत्य तप है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आ, ठीक है ना। अब जो सच बोलता है ना, आपकी एज वाले, मैं आपकी एज क्रॉस की हूं, आपकी एज वाले बोलते हैं, जो सच बोलता है ना उसको ही मार खानी पड़ती है, जो झूठ बोलता है उसको कुछ नहीं होता, ठीक कह रही हो, यही समझते हैं ना, जो सच्चा होता है ना उसको ही मार पड़ती है, जो झूठा होता है ना वो तो चुप करके निकल जाता, उसको तो दीदी कुछ भी नहीं कहती और ही मुस्कुरा के उससे बात करती है, और हम सच्चे हैं तो हमको मार खानी पड़ती है। ये निश्चय जानो प्यारी बहनों कि सच को ही तपना होता है, झूठ को तपना नहीं होता। जो बच्चा सच बोलता है ना, उसको सहन करना पड़ता है, उसका कारण है। सत्यता वैल्यू है ना, झूठ वैल्यू है क्या? सत्यता वैल्यू है। सत्यता जो वैल्यू है, उसको जब हम जीवन में धारण करेंगे तो उसमें मेहनत लगेगी ना, ऐसे ही तो नहीं लग जाएगी ना, मेहनत होगी ना। अब मैं आपको एक मिसाल सुनाती, कहानी सुनाती, जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया, और वो ये है। कईयों ने सुनी भी होगी क्योंकि मैं ज्यादा क्लासेस में उस सुनाती हूँ। एक बच्चा था, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो उसका जो टीचर था उसके पास वो गया, सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो टीचर ने उसको समझाया, नहीं बेटा पढ़ाई में मन लगाते हैं, पढ़ो। उसका फिर भी मन नहीं लगा, वो बेचारा चला गया, मन नहीं लग रहा था, फिर उठ के आ गया, सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मुझे घर जाने दो। टीचर ने उसको आंख दिखाई और थोड़ी देर के बाद बच्चा फिर बैठ गया और फिर निकल आया क्लास से बाहर, मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ने में, मैं घर जाना चाहता हूँ। अब टीचर उसको जोर से थप्पड़ मारा, बच्चा रोने लगा। तो बच्चे ने पता है क्या कहा? बच्चे ने कहा, सर अगर मैं आपको ये कहता मेरे पेट में दर्द है, क्या आप मुझे घर जाने देते? तो टीचर ने बोला, पक्का घर जाने देता। तो बच्चा क्या बोलता है, सर इसका अर्थ ये हुआ कि मैं झूठ बोलूं ना। टीचर ने बच्चे को गले लगा लिया और कहा, नहीं बेटा सत्य बोलने की कीमत देनी पड़ती है। समझा बहनों, समझा आपने इसका राज? सच बोलने की कीमत देनी पड़ती है, क्योंकि आप सत्यता की देवी बन रहे हो। ऐसे ही थोड़ी बन जाओगे, कुछ तो सहन करना पड़ेगा। सोने को तपना पड़ता है, लकड़ी को तपना नहीं पड़ता। ठीक है ना? जो कन्या झूठ बोलती है वो चुप करके पार हो जाती, और जो कन्या सच बोलती है उसको मार पड़ती है। कुछ भी हो जाए, मैंने सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। थोड़ी डांटी तो पड़ेगी ना। अब गलती की है, गलती की है, और आप कहो आपको कुछ भी ना कहा जाए, ऐसा होगा? ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं होगा ना। आपको कहा तो जाएगा, थोड़ा तो सुनना पड़ेगा ना। वो सुनने के लिए शक्ति चाहिए, और वो शक्ति हमको बाबा के ज्ञान से ही आती है। ओआरसी में भाई बहन है ना, 150 भाई बहने रहते हैं, ऐसे थोड़ी है गलती नहीं करते होंगे। कुछ होते हैं जो गड़बड़ भी करते हैं, और उनको पता है। मैंने उनको कहा है, आप सच बता दोगे मैं एक शब्द नहीं कहूंगी, मेरे से गलती हो गई, आगे से कभी रिपीट नहीं होगी, मैं एक शब्द नहीं कहूंगी। लेकिन आप गलती करके अगर गलती को छिपाओगे तो आप छिपा नहीं पाओगे, क्योंकि कभी ना कभी वो बाहर आएगी। अभी तो आप अपना इंप्रेशन बना लोगे, लेकिन जब वो कट्टी होके बाहर आएगी, क्योंकि प्यारी बहनों सत्यता हमारी नेचर है, सत्य स्वरूप मेरा स्वभाव है, आत्मा का पहला गुण सत्यता है, और अगर आप उसको छिपाओगे वो कोई ना कोई रूप से बाहर आएगा। उस समय आपके इंप्रेशन का क्या हाल होगा? सत्य, जो सच बोलता है वो निर्भय होता है, उसकी लाइफ टेंशन फ्री होती है, उसको सोचना नहीं पड़ता मैंने कल क्या कहा था, आज मैं क्या कहूं, ये उसको सोचना नहीं पड़ता। समझ आई बात? और जो झूठ बोलता है उसको याद रखना पड़ता है, पहले मैंने क्या कहा था, अब दूसरा कोई बहाना देना पड़ेगा। सत्यता, ट्रूथफुलनेस। दूसरा सत्यता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी माना अंदर बाहर साफ। बाबा को वो बच्चे पसंद हैं जो बिल्कुल सच्चे होते हैं, अंदर बाहर साफ। जो अंदर है वही बाहर है, जो बोल रहे हैं वही अंदर है, खिलवाड़ नहीं करते। समझ आई बात? तीसरा सत्यता अर्थात ऑनेस्टी। ऑनेस्टी ईमानदारी। ईमानदारी की बहुत गहरी परिभाषा है, स्वयं के साथ ईमानदार। स्वयं के साथ ईमानदार होना सबसे इंपॉर्टेंट। अपने आप को धोखे में नहीं रखना है। अपने आप को धोखे में रखेंगे तो अपनी नजरों से गिर जाएंगे, और किसी भी जीवन में अपनी नजरों से गिर जाना अर्थात जीवन समाप्त कर देना। काश कभी कोई अपनी नजरों से गिरने न पाए। सत्यता अर्थात झूठ कपट धोखेबाजी से मुक्त। बात को घुमाना फिराना ये सब कुछ होता है ना, वो नहीं होगा। सत्यता, जो सच्चा बच्चा होता है बाबा को याद सरलता से कर सकता है, एकाग्र बुद्धि सरलता से हो सकता है, और सत्यता की धारणा का आधार है पवित्रता। पवित्रता वो फाउंडेशन है जिसमें सत्यता के बीज अंकुरित होते हैं। पवित्रता नहीं तो सत्यता भी नहीं। तो मुझे सत्यता की देवी बनना है। सच्चा बच्चा सबको प्यारा लगना, सबको प्यारा लगना। कभी कोई बात हो जाएगी ना तो भी बड़े आपको सहारा देंगे, नहीं इसने सच तो बोला ना। बाबा भी सहारा देता है। इसलिए जीवन में इस चीज को आप अवश्य अपना लो। दूसरा है सभ्यता। बुरा नहीं मानना। आजकल सभ्यता समाप्त होती जा रही है। बड़ों के आगे हमें कैसा व्यवहार करना है? अरे हम लोग देखते थे, हम खड़े हैं, हम देखते थे दादियां आ रही हैं, हम लोग बातें कर रहे होते थे, चुप हो जाते थे, उनको देखते सार चुप हो जाते थे। दूर से दादियों की दृष्टि लेने लेते थे, दादियां नजदीक आती जाती थी, प्यार से दृष्टि और देती थी। आजकल सभ्यता पास से गुजर रहे हैं, चैटर बॉक्स की तरह बात करते जा रहे हैं। सत्यता को भी सभ्यता पूर्वक कहना है। बाबा ने एक बार कहा था, उसने सच बोला और तुमने क्रोध किया। कहते हैं ना, मैं सच बोल रही हूं ना इसलिए तो मेरे को गुस्सा आ रहा है। तुमको गुस्सा क्यों आ रहा है? सच बोल रही हूं ना तो सच हो तो लगेगा ना, गुस्सा क्यों है? ये सभ्यता नहीं है। संस्कृत में कुछ कहते हैं, सत्य ब्रूयात और मीठे के लिए मृदु ब्रूयात कुछ बोलते हैं ना, सच बोलो और मीठा बोलो। सत्यता को मिठाई की तरह बोलो, फिर आंसर क्या मिलता है? बहन जी सच तो कड़वा होता है ना। सच कड़वा होता है, आप शुगर कोटेड करके बोलो ना। कड़वी चीज को थोड़ा शुगर लगा के दो ना। बोलना सच है लेकिन प्यार से बोलो। बड़ों का सामना कर लेना सभ्यता तो नहीं है। हम लोग मिसाल देते थे, किसी जमाने में भाषण जब करती थी तो हम कहते थे देखो यहां से एजुकेशन का क्या फायदा, लोग एजुकेटेड होते जाते हैं, उनका ईगो भी बड़ा होता जाता है, और यहां से अमेरिका जाएंगे 22 घंटे इकट्ठे रहेंगे, नेक्स्ट सीट पर बैठे होंगे, दोनों ने एक जैसी टिकट पे की हुई है, दोनों ने एक जैसा सब कुछ किया हुआ है, एक जैसे इकोनॉमिक सोशल बैकग्राउंड से हैं, परंतु ईगो उससे ये नहीं पूछेंगे तुम कौन हो, कहां जा रहे हो, क्या है। 22 घंटे आप इकट्ठे बैठे हैं, ईगो। बुरा नहीं मानना। आज ये कीड़ा अपने यहां भी आ रहा है। ईगो तो ऐसा ईगो जो छोटे और बड़े का लिहाज ही नहीं। जो बातें मीठी बहनों में इतना ही कहूंगी, जो बातें हमें नर्सरी और केजी में सिखाई जाती है ना, उस समय हम सीखते हैं, उसका उपयोग इस एज में होता है।
को कायम।
सभ्यता है एकाग्रता, सभ्यता है एकाग्रता, एकाग्र बुद्धि। आपने देखा होगा राजघराने के लोग होते हैं, रानियां होती हैं, वे एकाग्र होती हैं। गुलजार दादी सुनाते हैं, जब यहां पर नेपाल के राजा की फैमिली आई थी तो जो रानी थी उसकी आंखें नीचे ही थी, ऊपर नहीं देखती थी। दादी कहती सिर्फ उसकी आंखें तब ऊपर हुई जब उसने मेरे से सौगात की। और हम दाएं बाएं ऊपर नीचे पूरा सुदर्शन चक्कर घुमा करके भी देखते हैं, सब और। एकाग्र मम्मा को देखो कितनी एकाग्र होके बैठती है, गुलजार दादी को देखो कितनी एकाग्र होके बैठती है। ये एकाग्रता आपके अंदर और सब प्रकार की सभ्यता लाएगी। हमारी असली सभ्यता एकाग्रता है, दिव्यता है। एकाग्रता दिव्य बनाएगी। हमारे से देवियों जैसी भावनाएं, ये देवी है, गुलजार दादी देखा कितना कम बोलती है, एसेंसफुल बोलती है। कम बोलना, मीठा बोलना, धीरा बोलना, सारयुक्त बोलना। अब इसके ऊपर आप लोग और सोचना, मैं इसका विस्तार नहीं करती हूँ। आप सब समझदार बच्चियां बैठी हो, सभ्यता क्या है उसको छोड़ो नहीं। कभी भी मुख से ये शब्द नहीं कहना प्यारी बहनों, आपका जमाना और था, हमारा जमाना और है। किस जमाने में ईमानदारी गलत चीज मानी गई है, किस जमाने में बड़ों को रिगार्ड देना गलत माना गया है, किस जमाने में झूठ बोलने को राइट माना गया है, किस जमाने में अशांत रहना, अशांत करना ओके किया गया है, बता दो, बता दो। हम सबका जमाना एक ही है, किस जमाने में कहा गया है टाइम वेस्ट करना अलाउड है, पिछले सप्ताह समय की वैल्यू बाबा ने बताई, तुम्हारे एक सेकंड की वैल्यू क्या है देखूं, किसको पता है, याद है, आप सब कुमारियां हो बताओ, हाँ? एक सेकंड दर्शन, एक सेकंड दर्शन के रूप से है। ये सभ्यता की ऊंचाई है। बोल वरदान के रूप से, नैन कर्म नजरों से निहाल, ये सभ्यता है। लक्ष्मी नारायण को देखो, ये सभ्यता है। लक्ष्मी नारायण ये देखेंगे, ये सभ्यता है। बोलते हैं, मुस्कुरा रहे हैं, नैनों में रूहानियत है, सादगी है, स्वच्छता है, पवित्रता है, दिव्यता है, अनासक्त वृत्ति है। ये सभ्यता है। और कभी मत कहना आपका जमाना अलग था, हमारा जमाना अलग है। कभी मत कहना, हम सबका जमाना एक ही। जो जमाने की वैल्यूज थी वही आज के जमाने की वैल्यूज है। समय बदला है, सन बदला है, दैट्स ऑल ना। सेंचुरी बदली है, दैट्स ऑल ना। जमाना तो वही है। ठीक है, तो आप बताओ कुमारियां, आप कैसी बनोगे? हाँ, कैसे बनोगे बोलो? अच्छे बनोगे ना। आप इतनी कन्याएं बाबा की सेवा में शक्ति सेना उतर आए तो सब नजरों से निहाल हो जाए, सारा भारत निहाल हो जाए। सोच लो क्या करना है। सेंटर पर रहने से डर लगता है? जिसको डर लगता हो मेरे पास आ जाना, मैं सब बता दूंगी आपको। और कभी भी डिसिप्लिन से डरना नहीं। आपको जो दीदी डिसिप्लिन सिखाती है ना, वो आपकी सच्ची मित्र है। जो आपको कुछ भी करना अलाउ कर दे ना, वो नहीं। जो दीदी आपको रोके टोके, जो दीदी आपको अकल दे समझ दे, जो दीदी आपको थोड़ी सी बात समझाए, जो दीदी आपको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखे, वो दीदी बहुत अच्छी दीदी है। कभी नहीं कहना स्ट्रिक्ट है। किस बात में स्ट्रिक्ट है? मर्यादा पालन कराती, यही तो करती है ना। खाने पीने को नहीं देती क्या? कपड़ा नहीं देती क्या? रेस्ट का टाइम नहीं देती क्या? सब देती है ना। यही तो कहती है ना, सवेरे ठीक टाइम पर उठो, सा क्लास करो, यही तो कहती है ना। आलस नहीं करो, यही तो कहती है ना। तो वो अच्छी हुई ना। अगर आपको छोड़ देंगे तो आप क्या बन जाओगे? डल्लर्स बनना है, डल बनना है। जमाना ये सब एक दूसरे के आगे भाग रहे हैं, पुरुषार्थ में तेज जा रहे हैं। ये जमाना है, हमको भी तो आगे जाना है ना। सोचना। ओके, ओम।